नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने देखा है कि पौलुस दान के बारे में अर्थात उदारता से दान देने के बारे में चर्चा कर रहा है और अब हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि पौलुस मसीही दान के विषय चर्चा करते हुए कहता है कि यह मनुष्य के मन में क्रियाशील परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम दूर दराज में भी रहकर आपके जीवित वचन का अध्ययन एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता और मदद कीजिए ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मसीही दान का प्रोत्साहन। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जी हाँ, इफिसियों की कलीसिया के धर्म वृद्धों से वार्तालाप में भी पौलुस ने उन्हें यही स्मरण करवाया था जो हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 35 पद में पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यहाँ पर स्पष्ट है कि यीशु बार बार यही कहता था, लेने से देना धन्य है। आज यह कहावत एक घिसी पीटी लोकोक्ति रह गई है, कही तो बहुत जाती है परंतु की बहुत कम जाती है। धन्य का वास्तविक अर्थ है आनंद। यीशु के कहने का अर्थ है कि लेने की अपेक्षा देने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आपका दान, आपका पैसा प्रभाव डालता है। मेरे मित्रों, आज आपकी और मेरी अग्नि परीक्षा यही है, क्या हम थोड़ा बोते हैं या क्या हम ऐसा ही दान दे देते हैं। मान लीजिए कि एक किसान भूमि में एक बोरा गेहूं का बीज डालता है और विपुल फसल काटता है। अब जब अगला मौसम आता है तो वह सोचता है, मैं आधा बोरा गेहूं बचा लेता हूँ और आधा बोरा ही गेहूं बोता हूँ। परिणाम क्या होगा, कोई भी किसान जानेगा कि फसल आधी ही आएगी। जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। मैं एक बार उस स्थान में प्रचार कर रहा था जहां मेरा बाल्यकाल बीता है। वहां मेरी ही आयु की एक महिला आई और कहने लगी कि जब मेरे अंकल की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई थी तब वह एक छोटी लड़की थी, परंतु उसे स्मरण है कि उसकी माता ने हमें भोजन भेजा था जो वहाँ की प्रथा थी कि दुखी परिवार को भोजन भेजे। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्षों बाद आज मुझे आपके प्रवचन सुनने को मिलेगा। हमने तब आपको शारीरिक भोजन दिया था और अब आप हमें आत्मिक भोजन दे रहे हैं। उन्होंने थोड़ा नहीं बोया था और मैं आशा करता हूँ कि वे विपुल फसल काट रहे हैं। मेरे विचार में यह जीवन के हर एक पक्ष में प्रासंगिक है या एक सिद्धांत है। आज हम में से कुछ विश्वासी दरिद्र हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ व्यवहार करने में कंजूस हैं। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ध्यान दीजिए, आप मन में जैसा निश्चय कर लें वैसा ही दान दें, परंतु परख यह है न कुड़ कुड़ के। परमेश्वर दान देने में शिकायत करना पसंद नहीं करता है। यदि आपके मन में यह विचार है कि आप ही रख लें तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप शायद यह भी सोचते होंगे कि कलीसिया के पदाधिकारी होने के कारण आपको दान देना चाहिए था। कलीसिया की सदस्यता के कारण आपके लिए दान देना आवश्यक है। निसंदेह कलीसिया आपसे कहेगी कि आप दान दें। जब मैं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा था तब मैं भी सदस्यों से कहता था कि उन्हें दान देना चाहिए, यह उनकी कलीसिया है और आर्थिक सहयोग देना उनका कर्तव्य है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। वह कहता है कि यदि आपका मन देकर उदास होता है तो आप दान न दें। उसे ऐसा दान नहीं चाहिए, वरन वह उसे काम में भी नहीं लेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर यही नहीं कहता है कि कुड़ कुड़ कर दान न दो, वह यह भी कहता है कि दबाव में आकर दान न दो। वह तो कभी नहीं चाहता कि आप मन की इच्छा न होते हुए भी या मन में आनंद न होते हुए भी दान करें, क्योंकि वह ऐसा दान ग्रहण नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखा देखी दान देते हैं कि यदि वे दान न दें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब दबाव के दान हैं। परमेश्वर को ऐसा दान नहीं चाहिए। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आराधना का सबसे अधिक आनंद का समय यही है। अनेक कलीसियाओं में भेंट लेने के बाद आराधक खड़े होकर गाते हैं सब बरकतों के वाणी को। मेरे विचार में यह अभिव्यक्ति अति उत्तम है। यदि यह स्तुति गान पहले गाया जाए तो आराधकों में देने का मन और सहर्ष दान देने की उमंग उत्पन्न हो जाएगी और खड़े होने पर बटुआ निकालना भी आसान होगा। परमेश्वर हर्ष से दान देने वालों से प्रसन्न होता है, अन्यथा वह आपसे दान नहीं चाहता। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ध्यान दीजिए, मैंने किसी मनुष्य को नहीं देखा है जो प्रभु के सेवा में दान देकर कंगाल हो गया हो। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, परंतु मैं उनसे भेंट नहीं कर पाया हूँ। मैं तो यह मानता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हो सकता है कि उसकी आशीषों में भौतिक वस्तुएं ना हो। अधिकांश विश्वासियों का यह सोचना है कि वे परमेश्वर को सांसारिक आशीषों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। मेरा विचार ऐसा नहीं है। वह आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है, परंतु आत्मिक आशीषों की, न कि भौतिक आशीषों की। दूसरा कुरिन्थियों 9:9-10 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ध्यान दीजिए, यह भजन 112 है जिसमें वह परमेश्वर का भय मानने वाले और दरिद्रों को दान देने वाले मनुष्य को धन्य कहता है। हमें उनके साथ आशीषें बांटनी है जिनके पास कमी है। मैं यह मानता हूं कि हमें कलीसिया में अपनों को संभालना चाहिए। मनुष्यों के साथ आशीष बांटने के अनेक अवसर हैं। अनेक विश्वासियों की सेवा शुश्रूषा या उनकी देखभाल का वरदान प्राप्त है। उनमें अपने गृह द्वार खोलकर मनुष्यों के चित्त को चैन पहुंचाने का गुण प्राप्त है। वे प्रायः अतिथियों को पहले वचन सुनने के लिए आराधना में लाते हैं, उसके पश्चात भोजन के लिए घर ले जाते हैं। यह मसीही गवाही का अद्भुत उदाहरण है। यह अकेलों और सहभागिता से रहित मनुष्यों तक पहुंचने की बड़ी उत्तम विधि है। पौलुस यहाँ एक किसान का उदाहरण देता है जो बहुत बीज बोता है क्योंकि वह विपुल फसल पाने की आशा करता है, परंतु परमेश्वर ही है जो उसे बहुतायत प्रदान करता है। आपके काम को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है। अतः परमेश्वर की सेवा में आर्थिक सहयोग देने से आप न डरें। मुझे एक युवक का अनुभव है जिसे मैंने दान न देने का प्रोत्साहन दिया। वह एक नवदीक्षित विश्वासी था और वह सेवा में इतना अधिक देता था कि उसका परिवार कष्ट उठा रहा था। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने परिवार की सुधि न लें तो अन्य जातियों से अधिक निकम्मे हैं। पहला तिमोथियुस की पत्री 5:8 में मैंने उसे यह पद पढ़ाया और चिताया कि उसे अपने परिवार की देखभाल करना आवश्यक है। इसके बाद वह मन खोलकर परमेश्वर की सेवा में दान दे। दान देने में भी परमेश्वर हमसे अतिवादिता नहीं चाहता है। हमें संतुलन बनाए रखना है। हमें भले युक्ति युक्त विवेक और परिशुद्ध निर्णायक क्षमता का होना आवश्यक है। हम 2 कुरिन्थियों 9:11-12 में पढ़ते हैं, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आपके दान देने पर मनुष्य परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं। स्तुति और महिमा परमेश्वर की होती है। 2 कुरिन्थियों 9:13 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। ध्यान दीजिए, प्रचार क्षेत्र में एक बार सेवक ने मुझे एक परिवार के बारे में बताया जो वास्तव में मेरा चिरपरिचित परिवार था। उसने कहा, वह मेरे साथ बड़ी उदारता दर्शाता है। मैं उनके लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। पौलुस जो कहता है वह यही है, क्या आपकी उदारता के लिए कहीं कोई परमेश्वर को धन्य कह रहा है? 2 कुरिन्थियों 9:14 में लिखा है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। दान देना अनुग्रह है। हमें दशमांश देने की आज्ञा नहीं दी गई है। यह व्यवस्था पालन नहीं है, यह अनुग्रह है। परमेश्वर हमसे कहता है कि अपनी परिस्थितियों के आधार पर अनुग्रह का दान दें। कुछ विश्वासियों को दशमांश से अधिक दान देना चाहिए, कुछ विश्वासी देने योग्य ही नहीं है। हमें अपने क्षमता के अनुसार देना चाहिए। अब पौलुस दान देने के विषय को और अधिक उत्तम रीति से प्रस्तुत करता है। 2 कुरिन्थियों 9:15 में लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। मेरे मित्रों, आप चाहे कितना भी दान दें, आप परमेश्वर के तुल्य नहीं दे सकते हैं। उसने हमें अवर्णित वरदान दिए हैं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के उस दान की बराबरी नहीं कर सकता कि उसने हमारे स्थान पर मरने के लिए अपना पुत्र दे दिया। पल भर इस पर विचार करें तो हम 8:9 पर लौट आते हैं। वह धनवान था, परंतु वह स्वर्ग छोड़कर अपनी महिमा का त्याग करके इस संसार में सेवक स्वरूप आया। वह यहाँ वास करने नहीं, आपके लिए अपनी जान बलि चढ़ाने के लिए आया था। वह पार्श्विक मृत्यु स्वीकार करने आया था कि आपको और मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो। उसने आपके और मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया। इब्रानियों के पत्री 12:2 में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, ओह मेरे मित्रों, वह अद्भुत और महिमामय उद्धार करता है, उसे नीचा न गिराएं। वह चमकता हुआ भोर का सितारा है। वह परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारा उद्धार किया है। वह आपके और मेरे लिए अवर्णित उपहार है। यह दान की चरम सीमा है। इस दान के पार कोई नहीं जा सकता। मेरे मित्रों, यहाँ पर 9 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 10 पर विचार करेंगे। आज का विषय आगे मिलता है, पौलुस की प्रेरिताई का प्रामाणीकरण। अब हम इस पत्री के अंतिम महान भाग में आते हैं जो पौलुस की प्रेरिताई की बुलाहट के संबंध में है। पहले भाग को मैंने मसीही जीवन कहा था, दूसरे को मसीही दान और इस भाग को मैं मसीही चौकसी कहता हूँ। पौलुस ने मसीही दान की चर्चा आरंभ की तो वहां एक अमूल परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम एक पूर्ण रूपेण नए भाग में आते हैं और इसमें शैली और स्वर का अमूल परिवर्तन देखते हैं कि अनेक टीकाकार इसे तीसरा पत्र भी कहते हैं, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं करता। स्वर परिवर्तन का कारण भी समझाया जा सकता है। आइए देखें, कुरिन्थ की कलीसिया विभाजित थी। पौलुस ने अपने प्रथम पत्र में कहा, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, कलीसिया के अधिकांश जन पौलुस के अधिकार का सम्मान करते थे, परंतु कुछ लोग उसे अस्वीकार करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम 9 अध्यायों में वह इन्हीं पक्षधरों को संबोधित कर रहा है और अध्याय 10, 11, 12 में वह विश्वासियों से बातें कर रहा है। अतः दिन के प्रकाश से अंधकार का सा परिवर्तन आता दिख रहा है। इस अध्याय में हम प्रेरित पौलुस का प्रेम भरा दिल खुला हुआ देखते हैं, उसका सेवक का मन और एक मनुष्य का मन। यहाँ हम उस पौलुस को देखते हैं जिसे हमने पहले नहीं देखा है। वह अपनी प्रेरिताई की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए देखें, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 पद लिखा हुआ है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने सुधार के निमित्त कठोर पत्र लिखा था और ये अल्पसंख्यक विपक्षी उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहते थे, पौलुस लिखता तो बड़ी बड़ी बातें हैं, परंतु हमारे मध्य आकर वह नगण्य प्रतीत होता है। पौलुस उनसे मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण आग्रह करता है। पौलुस कुरिन्थ में तंबू बनाने का काम करता था। वह किसी पर बोझ भी नहीं बना, वह बोझ बनना भी नहीं चाहता था। वह पूरा दिन बाजार में परिश्रम करता था और पसीने से तर हो जाता था। उसके हाथ गंदे हो जाते थे। वह काम करते करते भी थक जाता था और आसपास के और आने जाने वाले मनुष्यों से बातें करता था। अतः कुरिन्थ के विपक्षी विश्वासी कहते थे कि वह प्रेरित नहीं है, एक तंबू बनाने वाला है, वह एक साधारण मनुष्य है। निसंदेह मेरे मित्रों, वह एक साधारण मनुष्य था, परंतु वह बुलाया हुआ प्रेरित था। वह मनुष्यों का सा ही दिखाई देता था और सच तो यह है कि वह हाथों से काम भी करता था, इसलिए कुछ लोग उसे तुच्छ समझते थे। अतः जब वह कहता है, मैं वही पौलुस हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ, उसके कहने का अर्थ है कि वह देहधारी मसीह के सदृश है। वह कहता है, जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। वह देखने में विशिष्ट जन प्रतीत नहीं होता था। वह कोई असाधारण मनुष्य नहीं था, वह तो तंबू बनाने वाला एक साधारण मनुष्य था। अतः कुरिन्थ के विपक्षी विश्वासी गलत नहीं कहते थे, हमारे बीच में तो वह एक दीन मनुष्य हो जाता है, परंतु पत्र बड़ी निर्भीकता और अधिकार के साथ लिखता है। वह अपने आप को समझता क्या है? पौलुस लिखता है, मसीह की नम्रता और कोमलता हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्रतिवाद में आवाज नहीं निकाली थी। हमारा प्रभु देखने में असाधारण मनुष्य नहीं था। वह वैसा नहीं था जैसा चित्रकार हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। उसके सिर के चारों ओर प्रकाश मंडल नहीं था। वह नम्र और कोमल था और उसके अनुयायियों में भी यही गुण उनकी पहचान होना चाहिए। यही विश्वासियों के भाईचारे का बंधन है। अतः पौलुस उनसे कहता है, रूप रंग से मूर्ख मत बनो। पौलुस के पास प्रेरित होने का अधिकार था, उसके पास ईश्वरीय सेवा थी। वह अधिकार से कहता था, उसे दिव्य शक्ति का बोध था और वह दिव्य शक्ति का उपयोग भी करता था। पौलुस उनसे निवेदन करता है कि वे उसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य न करें। जी हाँ, वह अपनी नम्रता और कोमलता में ही आना चाहता है। वह कहता है कि वे उसे केवल दैहिक न समझें। मेरे विचार में आवश्यक नहीं कि सुसमाचार का सेवक बागा पहने और गले में सफेद पट्टा डाले कि मनुष्य उसे प्रभु यीशु मसीह का सेवक समझे। मेरे विचार में तो उसका जीवन और वचन का प्रचार ही उसके सेवक होने का प्रमाण है। आज भी कुरिन्थ के विश्वासियों की यह मानसिकता हम में व्याप्त है। वे वचन के शिक्षक को तुच्छ दिखाना चाहते हैं। इस विषय में शैतान बहुत चतुर है। शैतान इस परमेश्वर के वचन पर वार नहीं कर रहा है। जन समूह को परमेश्वर के वचन में महान रुचि है, तो शैतान क्या करता है, वह वचन के शिक्षक एवं प्रचारक की छवि बिगाड़ना चाहता है। वह इसी प्रकार भीतर प्रवेश करता है। वह मनुष्य की मानहानि करना चाहता है। पौलुस के साथ भी ठीक यही हुआ था। मेरे मित्रों, मैं एक ऐसी कलीसिया को जानता हूं जहां उनका पास्टर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। कलीसिया के कुछ सदस्य उससे बहुत ही अधिक अप्रसन्न थे। जब वह वहां से चला गया, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास किया। वे अपने हाथों में बड़ी बड़ी बाइबल लेकर आते थे और कहते थे कि वे परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। वे वास्तव में वचन पर विश्वास नहीं करते थे। सच तो यह है कि वे वचन को जानते भी नहीं थे। यदि पास्टर परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे और ऐसे मनुष्यों को आत्मिक पोषण न दे पाए, तो मेरा विश्वास करें, वह संकटकालीन स्थिति में है। जी हाँ, यह शैतान की युक्ति है जो आपको और मुझे वचन सुनने से रोकता है और प्रचारकों को अटैक करता है, उन पर आक्रमण करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज पौलुस के प्रेरिताई पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर के दिए हुए वचन पर मनन करने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी।